नमस्कार भारत, 15 फरवरी शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में चरमपंथी हमले में 34 सीआरपीएफ जवानों की मौत, सुरक्षा हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह।
इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं।
सुरक्षा विशेषज्ञों ने जताई चिंता, पुलवामा हमले से कश्मीर घाटी के लिए मिल रहे खतरनाक संकेत।
जाहिर है कि इसके नतीजे में मिलिटेंसी जो है उसको बूस्ट मिलेगा।
जानेंगे पुलवामा में सुरक्षा के लिहाज से कहां हुई चूक और कैसे निपटा जा सकता है इन हालात से।
जब तक कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होके इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में लेथपोरा के पास चरमपंथियों ने आईडी धमाका कर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 34 जवानों के मारे जाने की खबर है और कई घायल हुए हैं। इस चरमपंथी हमले में जिस सीआरपीएफ बस को निशाना बनाया गया उसमें 40 जवान सवार थे। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। वहीं भारत ने पाकिस्तान आधारित इस चरमपंथी समूह पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की अपील की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से इस चरमपंथी संगठन के प्रमुख मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। अमरीकी राष्ट्रपति मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंड के इंतजाम के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले हैं। आपातकाल लगाकर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूदा सेना और आपात राहत के बजट को दीवार के लिए खर्च कर पाएंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और कुछ रिपब्लिकन नेता भी ट्रंप के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने डोनाल्ड ट्रंप को आपातकाल लगाने पर चेतावनी देते हुए कहा,
If President Trump decides to go forward with a disaster declaration, he'll be making a tremendous mistake.
अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस भयानक घोषणा के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना एक गैर कानूनी फैसला है और राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग है। यह अपने उस वादे से भी ध्यान भटकाना है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो मैक्सिको से इस दीवार के लिए भुगतान कराएंगे। ये थे अमरीका के डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी लीडर चक शूमर। नाइजीरिया में 16 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को नाइजीरिया में कई चुनावी रैलियां की गईं। राष्ट्रपति पद के इस मुकाबले में मौजूदा राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी और पूर्व राष्ट्रपति अतीकू अबूबकर आमने सामने हैं। आखिरी दिन दोनों उम्मीदवार अपने अपने गृह क्षेत्र पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। टेलीविजन पर नाइजीरिया के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बुहारी ने कहा, इस सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है कि 2019 के चुनाव पूरी सुरक्षा और शांति के माहौल में हों। आपके राष्ट्रपति और सहनागरिक होने के नाते मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलने और वोट देकर अपने महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने की अपील करता हूं। ये थे नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को अपनी ब्रेक्जिट योजना पर फिर से एक बड़ी संसदीय हार का सामना करना पड़ा है। दो हफ्ते पहले जिस दृष्टिकोण पर सहमति बनी थी सदस्यों ने उसे समर्थन देने की सरकार की अपील के खिलाफ मतदान किया है। विद्रोह करने वाले ब्रेक्जिट समर्थकों ने कहा कि बिना समझौते के अगले महीने यूरोपीय संघ छोड़ने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा। क्यूबा की सरकार ने अमेरिका पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए कैरेबियन द्वीप समूह में गुप्त रूप से सेना भेजने का आरोप लगाया है। सत्ताधारी दल क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी के एक अखबार में दिए गए बयान में क्यूबा ने कहा है कि पिछले हफ्ते अमरीकी सैन्य एयरक्राफ्ट पुएर्टो रिको द्वीप पर और इलाके के अन्य रणनीतिक जगहों पर उतरे थे। हालांकि इस पर अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे अपने देश के हर इंच की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। पार्कलैंड शूटिंग की सालगिरह पर अमेरिका में विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा जुलूस निकाले जा रहे हैं। फ्लोरिडा के एक हाई स्कूल में हुए इस हमले में एक शख्स के अचानक गोलीबारी करने से 17 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना को याद करते हुए स्कूलों में कुछ देर का मौन रखा गया और प्रदर्शन भी हुए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। भारत प्रशासित कश्मीर में कल सीआरपीएफ जवानों पर हुए चरमपंथी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 34 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और देश दुनिया में इस हमले की निंदा हो रही है। आज भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
भारत प्रशासित कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले को बीते 30 सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर हुए हमले में अब तक 34 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कल दिन में सीआरपीएफ की 54 बटालियन के जवानों का काफिला बसों में जा रहा था, जिसमें एक विस्फोटक से भरी गाड़ी ने काफिले में आकर धमाका कर दिया। चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा है कि पाकिस्तान स्थित संगठन द्वारा किए गए इस हमले का जवाब दिया जाएगा।
हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश सराहना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
इस हमले के बाद गृह मंत्री ने अपने सभी दौरों को रद्द कर दिया है और आज वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां वो और राज्यपाल सत्यपाल मलिक सुरक्षा बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा का जायजा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से इस मामले को लेकर बात की है। इससे पहले किए गए ट्वीट में उन्होंने इस हमले की निंदा की और कहा कि बहादुर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इस घटना की कड़ी निंदा की। वहीं लखनऊ में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी और 2 मिनट का मौन रखा।
जैसे आपको मालूम है ये कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा के लिए रखा गया था, लेकिन पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें। और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है, आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले की निंदा की है। विभिन्न नेताओं के इतर भारत में मौजूद अमरीका, इसराइल, जर्मनी, फ्रांस, मालदीव, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के राजदूतों ने भी ट्वीट के जरिए इस हमले की निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी अपील दोहराते हुए कहा है कि वे जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नामित आतंकियों की सूची में शामिल किए जाने का समर्थन करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मसूद अजहर के नेतृत्व वाले समूह को पाकिस्तान सरकार ने भारत और अन्य जगहों पर हमले करने के लिए पूरी आजादी दे रखी है। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
पुलवामा में हमले के बाद किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए चलेंगे श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर के पास। रियाज, किस तरह की स्थिति है अब घाटी में?
जी देखें, रेड अलर्ट तो कल रात से ही जारी किया गया था और जो घटनास्थल है लेथपोरा का एरिया, वहाँ उस एरिया को सील किया गया है जहाँ पे यह हमला हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस का मानना है कि वहाँ पे काफी एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर वहाँ लोगों को या मीडिया को जाने दिया जाए। और इसमें एक और बात ये है कि ये बहुत ही हाई लेवल प्रोब होने जा रहा है, जैसा कि पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है, क्योंकि एनआईए की एक टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आज ही घाटी पहुंच रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइन करेंगे इस हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में।
जी, क्या कुछ ऐसा सामने आया है अभी तक कि चूक हुई कहां पर, कुछ अभी तक थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो?
जी देखें, ऐसा तो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऑथेंटिक सोर्सेज से पता चला है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने 12 तारीख को एक इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किया था सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अक्रॉस द कंट्री, और उसमें ये कहा गया था कि जैश मोहम्मद ने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने एक हमले को फीचर किया था जो अफगानिस्तान में हुआ था। एक गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज में रैम हो जाती है, एक्सप्लोसिव लेडन होती है, वो धमाका होता है, और उसमें धमकी दी गई थी कि ऐसा हमला कश्मीर में भी हो सकता है। तो इसी को टिप मानते हुए जम्मू कश्मीर के स्टेट इंटेलिजेंस ने पूरा कॉशन किया था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, लेकिन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कल माना। उन्होंने कहा कि इसे बड़ी चूक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि इसमें कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लूप होल है जिसको अब इस जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अब चलेंगे हम जम्मू, जहां से हमारे सहयोगी मोहित कंधारी फोन पर हमसे जुड़ चुके हैं। मोहित, वहां पे कैसी स्थिति है?
देखिए, जब से कल दिन में चरमपंथी हमला हुआ उसके बाद से जम्मू में स्थिति जो है वो कुछ हद तक यह तो तनावपूर्ण बनी हुई है। काफी संगठन जो है, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन और छात्र संगठन जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस दफा पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ जम्मू की विभिन्न संस्थाओं ने जम्मू बंद की कॉल दे रखी है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, तमाम दल जो है एक साथ मिलके जो है वो ये बताना चाहते हैं कि ये हमला जो हुआ है उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और वो देर शाम उन्होंने जम्मू में जो तवी पुल है वहां पर रात में 12 बजे तक जो है लगातार बैठ कर धरना प्रदर्शन किया। पहले श्रद्धांजलि समारोह उन्होंने आयोजित किया था जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी जिन जवानों की शहादत हुई है, और उसके बाद उन्होंने जो है लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में घूम कर जो है वो नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और ये भारत सरकार से बार बार ये मांग उठाई कि इस बार जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही बंद कॉल को देखते हुए जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी है और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां आज छुट्टी डिक्लेयर की गई है, और जो जम्मू से जुड़े आसपास के इलाके हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजौरी पुंछ का इलाका है, उधमपुर, रियासी, डोडा, तमाम जगहों पर जो है एहतियात बरती जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहित कंधारी, जानकारी दे रहे थे जम्मू से। पुलवामा में हुए हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के सुरक्षा विश्लेषक और जानकार चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि इस हमले से घाटी के हालात और गंभीर होने की आशंका पैदा हो गई है। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
3 वर्ष पहले कश्मीर के उड़ी में सेना के कैंप पर चरमपंथी हमले के बाद दूसरा बड़ा चरमपंथी हमला गुरुवार को कश्मीर घाटी के लेथपोरा में सीआरपीएफ की कार्रवाई पर किया गया। इस फिदायीन हमले ने तरह तरह के सवालों को फिर एक बार चर्चे में लाया है। यह हमला एक ऐसे समय में हुआ है जब कश्मीर में बीते 2 वर्षों से करीब 500 चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इन मुठभेड़ों के दौरान सुरक्षा बलों को इस कदर किसी बड़े नुकसान से दोचार नहीं होना पड़ा है। पुलिस के पूर्व डीआईजी और लेखक अली मोहम्मद बटाली कहते हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से कश्मीर में चरमपंथ के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट 2 साल पहले शुरू किया था, इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि सैन्य ऑपरेशन का रास्ता नहीं चरमपंथ को खत्म कर सका है और नहीं कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं।
मैं इतना कहूंगा कि एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि सिचुएशन इन द वैली इज फार फ्रॉम नॉर्मल एंड इट इज डिटेरियरेटिंग डे बाय डे।
पुलिस के पूर्व डीजी और सुरक्षा के जानकार एमएम खजूरिया कहते हैं इस फिदायीन हमले ने बहुत ही खतरनाक संकेत दिए हैं।
तो लोकल नौजवान जो हैं वो वहाबी इस्लामी और आईएसआईएस की किस्म की सोच के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये खतरे की स्थिति है।
पत्रकार और विश्लेषक हारून ऋषि कहते हैं इस फिदायीन हमले से चरमपंथियों के हौसले और भी बुलंद होंगे।
इस नियत का इतनी ज्यादा बैकवर्ड, इतनी ज्यादा कैजुअलिटी कभी नहीं हुई है फोर्सेस को, तो जाहिर है कि इसके नतीजे में मिलिटेंसी जो है वादी में जारी तो उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये मिलिटेंटों के लिए ये एक्शन जाहिर है एनकरेजिंग होगी, क्योंकि इसके 2 साल के दौरान हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेज का अपर हैंड रहा है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजी और मौजूदा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसपी वैद से हमने पूछा कि क्या इतना बड़ा हमला सुरक्षा की चूक का नतीजा है, तो उनका कहना था इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश मोहम्मद ने ली है। जैश ने अपने एक बयान में बताया है कि यह हमला पुलवामा के रहने वाले 21 वर्ष के आदिल अहमद ने अंजाम दिया है। बताया जाता है कि आदिल बीते साल जैश में शामिल हो गया था। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना सैकड़ों सुरक्षा बलों की गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होती हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह के हमलों से बचना आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती होगी। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
सीआरपीएफ की 54 बटालियन के जिस काफिले पर कल हमला हुआ उसमें 70 गाड़ियां शामिल थीं। क्या ये हमला सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक के कारण हुआ, और इस घटना के बाद भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो, انہی سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے ہمارے سہیوگی محمد شاہد نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد سے بات کی.
دیکھیے بڑا دکھی انسیڈنٹ ہے, اس کے کئی ایک پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں روڈ اوپننگ میں کوئی چھوٹ ہوئی ہے, کوئی ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا ہے کہیں پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس او پی کو اگر ٹھیک سے روڈ اوپننگ ہوتی تو شاید یہ حرکت نہ ہو پاتی. خیر یہ تو ایک چھوٹی بات ہے. اس سے نیکسٹ بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے, اور جو ابھی حادثہ ہوا ہے اس میں ہوم گراؤنڈ ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے. جو ویکتی اس گاڑی کو چلا کے لے گیا تھا جو ایکسپلوزو سے بھری ہوئی تھی, اس میں ایک کشمیری لڑکا تھا جو ریڈیکلائز ہو چکا تھا. تو یہ ریڈیکلائزیشن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں, کہاں اور کیسے ہو رہی ہے, اس کو کیسے روکا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ایس او پیز بنی ہوئی ہیں ان کو اور تھوڑا امپروو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اس میں میں سمجھتا ہوں نئی ٹیکنالوجی لگانی پڑے گی, مے بی ہیلی کاپٹرز کو انوالو کرنا پڑے گا, اور کئی ایک چیزیں کرنی پڑے گی. اب بات آئی بڑی باتوں کی. بڑی بات سب سے یہ ہے کہ جب تک کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک جٹ ہو کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ چلتا رہے گا. ابھی آپ دیکھیے پچھلے تین چار دن میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے جی افضل گرو کے جو ریمینز ہیں اس کو واپس لایا جائے, ٹیررسٹ ہمارے اپنے بچے ان کو چھوڑ دیا جائے, یہ جو بندوق اڑ کے گھوم رہے ہیں ان سے بات کی جائے, حریت والے ان کو پیسہ دے کے ان کو بڑھوتی دیتے ہیں, اسٹون پیلٹنگ کراتے ہیں. تو یہ سب پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وی ہیو اینیمی ود ان اینڈ وی ہیو اینیمی آؤٹ سائڈ.
آپ نے کہا کہ دونوں اور دشمن ہیں, یہاں پر بھی ہیں وہاں پر بھی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کا اور سیکورٹی فورسز کا ریسپانس کس طریقے کا ہوگا یا ہونا چاہیے؟
دیکھیے ریسپانس یہ تو ٹیکٹیکل لیول کی باتیں ہیں. ٹیکٹیکل لیول پہ یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں, ہوتی رہیں گی, اور آگے بھی چل کے ہوتی رہیں گی. اوری ہوا, پٹھان کوٹ ہوا, نگروٹا ہوا, پلوامہ ہوا, کتنے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. یہ سب انسیڈنٹس ٹیکٹیکل لیول کے, اس کی ہم نے جواب دیے. ٹیررسٹ بہت نیوٹرلائز ہو چکے ہیں, سرجیکل اسٹرائک کیا ٹیکٹیکل لیول پہ. یہ ٹیکٹیکل باتیں تو چلتی رہیں گی اور یہ اس کو روکنا مشکل ہے. بڑی بات یہ ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے, اس کا مول کارن کیا ہے. مول کارن یہ ہے کہ جب تک کہ ہم ایک اسٹریٹجک ریسپانس نہیں بنائیں گے, جب تک کہ ہم ایک کریڈیبل ڈیٹرنس نہیں بنائیں گے, جب تک کہ ہم اپنی پالیٹکس کو ٹھیک نہیں کریں گے.
کل اس حملے کے بعد گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے یہ کہا کہ پاکستان سمرتھت جیش اے محمد نے یہ اس حملے کو انجام دیا ہے. تو پاکستان میں کیا پرتکریا ہے جاننے کے لیے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں بی بی سی سنواداتا حمیرہ کنول سے بات کی.
جی, پلوامہ میں ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کے فورن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں فورن آفس کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ بہت تشویشناک معاملہ ہے, اور پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کشمیر میں جو وائلنس کے ایکٹس ہوئے ہیں, جتنے بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں, ان کو کنڈیم کیا ہے, ان کی ہمیشہ مذمت کی ہے. اسپوکس پرسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم انڈیا کی حکومت اور میڈیا کی جانب سے جو پلوامہ حملے کے حوالے سے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ ابھی اس کی تحقیقات نہیں ہوئی ابھی تک, تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کیا انہوں نے.
تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا نام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حملے میں, اس کی اس نے آلوچنا کی ہے. سنیکت راشٹر اور کئی دیشوں نے پلوامہ حملے کی آلوچنا کی ہے. امریکہ نے بھی اس کی گھور نندا کی ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر چرم پنتھ کے خلاف لڑنے پر پرتیبدھتا جتائی ہے. جانکاری دے رہے ہیں نیو یارک سے سلیم رضوی.
امریکی ودیش منترالے کے پروکتا رابرٹ پالادینو نے ایک بیان جاری کر کے پلوامہ حملے کی گھور نندا کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کے جموں کشمیر راج میں سی آر پی ایف کے قافلے پر کیے گئے آتنکی حملے کی کڑے شبدوں میں نندا کرتا ہے. ہم مرنے والوں کے پریوار جنوں کے پرتی گہری سمویدنا ویکت کرتے ہیں. امریکی بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارتیہ سرکار کے ساتھ مل کر ہر پرکار کے آتنکواد کے خلاف لڑنے کے لیے کٹیبدھ ہے. امریکی ودیش منترالے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سنیکت راشٹر دوارا پرتبندھت پاکستان استھت آتنکی گٹ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. امریکہ سبھی دیشوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کے پرستاووں کے تحت اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آتنکوادیوں کو نہ تو پناہ دیں اور نہ ہی ان کو مدد پہنچائیں. نئی دلی میں امریکی راجدوت کینت جسٹر نے بھی اس حملے کی نندا کی اور کہا کہ آتنکواد سے لڑنے اور اسے ہرانے کے لیے امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ کے کئی کانگریس مین اور سینیٹروں نے بھی پلوامہ حملے کی سخت نندا کی ہے. डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर मार्क वार्नर ने एक ट्वीट में लिखा कि मेरा दिल तो कश्मीर में चरमपंथी हमले में मारे गए लोगों के साथ है। अमरीका अपने सहयोगी भारत के साथ उन लोगों के खिलाफ खड़ा है जो इस जघन्य आतंकी हमले के जिम्मेदार हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेसमैन फ्रैंक पलोन ने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर आतंकी हमला नफरत से भरा हुआ एक कायरतापूर्ण हमला था। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं। संयुक्त राष्ट्र ने भी पुलवामा हमले की निंदा की है। पत्रकारों से ब्रीफिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए कहा,
वी स्ट्रांगली कंडेम टुडेज अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड टू द गवर्नमेंट।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफान दुजारिक कह रहे थे, हम जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और मरने वालों के परिवार वालों और भारत सरकार और भारतीय लोगों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं। हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कानून के कटहरे में लाए जाने की अपील करते हैं। गुरुवार को पुलवामा जिले के लैथपुरा में एक चरमपंथी हमले में 34 सीआरपीएफ जवान मारे गए और कई घायल हुए। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा में आतंकी हमले को पाकिस्तान समर्थित हमला करार दिया है। भारत ने कई बार कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवाया जाए, लेकिन चीन ने आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्तावों को वीटो के जरिए कई बार रोका। भारत लंबे अरसे से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान में स्थित विभिन्न आतंकी गुट भारत में हमले करते हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब अखबारों की समीक्षा। कमलेश, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
आदर्श जी, जैसे कि सभी अखबारों ने पुलवामा हमले को प्रमुखता से छापा है, तस्वीर दी है जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि हमले के बाद जो जिस बस पर हमला हुआ वो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गई है। सुरक्षा बल वहां पहुंचे हैं जाँच के लिए। इसके अलावा कई हिंदुस्तान टाइम्स ने नक्शा भी दिया है कि किस जगह पर हमला हुआ है। हम टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो उसने एक अलग से एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि जिस आत्मघाती हमलावर ने यह हमला किया है वो अफगानिस्तान में अमेरिका पर तालिबान की जीत से प्रेरित था, उसके बाद ही उन्होंने ये आत्मघाती हमला करने का फैसला लिया। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी बयान दिया है, मलिक का भी बयान दिया है कि इस हमले में खुफिया विफलता की बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं एक विफलता है।
जी, और इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा है कि जिस शख्स ने, जो 22 साल का लड़का बताया जा रहा है जिसने आत्मघाती बम हमले को अंजाम दिया, वो उस घटनास्थल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता था।
जी, एक और बात है टाइम्स ऑफ इंडिया की ही है वो बात कि जिस रास्ते से काफिला गुजर रहा था वहाँ पर जाँच की गई थी लेकिन एक सिविलियन गाड़ी को वहाँ आने दिया गया। ये भी एक कारण बना कि सिविलियन होने के कारण उस पर शायद संदेह नहीं हुआ और उसे आने की इजाज़त मिली।
जी,
इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है कि सरकार एक ऐसी रणनीति या एक ऐसा नियम बनाने जा रही है जिससे मतदान से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार को रोका जा सके। अब तक ये नियम जो था अखबारों पर, प्रिंट पर और टेलीविज़न पर लागू था, हो सकता है कि आगे चलकर सोशल मीडिया पर भी लागू हो जाए और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कई तरीके खोज रहा है।
जी,
और नवभारत टाइम्स की एक खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है उसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से लिखा है, उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस से बातचीत चल रही थी लेकिन उन्होंने लगभग ना कर दी है। और हम ये भी बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो रैली हुई थी विपक्ष की, उसमें कांग्रेस नेता आनंद शर्मा मौजूद थे जिससे कि दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावना कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अभी ना हो चुकी है।
जी,
और एक अमर उजाला में खबर है कि उबर कैब चालक पर रेप का आरोप लगाया है एक युवती ने जो ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जब उबर पर अपनी कैब बुक कराई तो जो ड्राइवर उसमें उनका, जिनका नाम दर्ज था, वो नहीं आए, कोई और आ गए।
यानी कि इस तरह से सावधानी बरतने की भी जरूरत है, चेक करें पहले अगर कोई इस तरह के कैब ऐप के जरिए बुक करवाता है।
बुक कराते हैं तो सेम ड्राइवर, वही ड्राइवर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश।
बीबीसी इंडिया बोल।
कप्तान है दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज, गेंदबाजों की रैंकिंग में बुमराह का राज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जमाली धाक, अब मिशन है वर्ल्ड चैंपियन का ताज।
लेकिन क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है? इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल में होगी पड़ताल इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 16 फरवरी को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब बात राजस्थान की, जहां आरक्षण का कानून बनने के बावजूद गुर्जर आंदोलन में गतिरोध नहीं टूटा है। आंदोलनकारी गुर्जर नेता अभी कानून पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि आरक्षण फिर से कानूनी भंवर में फंस जाएगा। राज्य में अब भी कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात थमा हुआ है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कहीं सड़क मार्ग पर यातायात का कोलाहल नहीं है तो कहीं रेल पटरियों पर वीराना है। गुर्जर आंदोलनकारी इन मार्गों पर पड़ाव डाले बैठे हैं और नारे बुलंद कर रहे हैं। गुर्जर समाज की मांग है कि उनके लिए 5% आरक्षण पुख्ता किया जाए। राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया और आरक्षण की अधिसूचना भी जारी कर दी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहते हैं आंदोलनकारियों की मांग के मुताबिक कानून बना दिया गया है।
जो विधानसभा और प्रदेश की सरकार के कार्य क्षेत्र में था उन सभी कदमों पर हमने काम किया है और जो मांगे उठाई गई थी संघर्ष समिति के माध्यम से उन सभी मांगों को मान लिया गया है। जो मांग थी कि आरक्षण 5% किया जाए, विधानसभा ने सर्वसम्मति से उस आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 5% किया है। अब समस्या का समाधान हो चुका है।
सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी को नए बने कानून के कागज लेकर रेल पटरियों तक भेजा, लेकिन आंदोलनकारी अपना कदम वापस लेने को तैयार नहीं हुए। सरकार ने यह समझाने की कोशिश की है कि राज्य में उसी तर्ज पर प्रावधान किया गया है जैसे केंद्र ने 10% आरक्षण के लिए किया है, लेकिन गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है।
क्या 10% का हवाला विल सबस्टेंशिएट? अगर 10% वाला हवाला सबस्टेंशिएट करता है और पिटीशन से इसको इम्यून करता है, इस बात की गारंटी सरकार हमको देती है तो वील एक्सेप्ट इट। लिखित में दे दो, हमको तो दे दो, विल डिफेंड, वील एक्सेप्ट।
आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई और जयपुर दिल्ली रेलमार्ग को बाधित कर रखा है। कुछ स्थानों पर आंदोलनकारी राजमार्गों पर भी जाम लगाए बैठे हैं। इसमें किसी गंतव्य के लिए निकले यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बस अड्डों और रेल स्टेशनों पर फंसे पड़े यात्रियों की भीड़ लगी हुई है।
रूट से गाड़ियां नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है उन लोगों को, तो जिस रूट से नहीं है तो बाइक जो आगरा बाइक पर रोड बंद कर रखा है तो दिक्कत लोग है ही है, और जिनको मिल रही है उनको दिक्कत नहीं है। जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, साधन नहीं उनको दिक्कत है। सर्दी का मौसम, जैसे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या बूढ़ा बड़ा आदमी हो, दिक्कत होती ही है।
पिछले 13 सालों में इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये 5वां मौका है जब आरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन अब भी आंदोलन का पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई चयनकर्ता आज भारतीय टीम का ऐलान करेंगे। इस साल 30 मई से इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम आखिरी बार अपनी तैयारियों का जायजा इसी सीरीज से लेगी। विश्व कप के लिए अभी 2 स्थान ऐसे बचे हैं जिनमें खिलाड़ी तय नहीं किए गए हैं। इनमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का एक स्थान भी शामिल है, जिसमें चयनकर्ता जयदेव उनादकट और खलील अहमद में से किसी एक पर अंतिम मुहर लगाना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला से पता चलेगा कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कौन सा खिलाड़ी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और दूसरे विकेटकीपर के रूप में इंग्लैंड जाएगा। भारतीय टीम 24 फरवरी से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। वनडे श्रृंखला से पहले 2 T20 होंगे, जिससे उप कप्तान रोहित शर्मा को विश्राम दिया जा सकता है, जबकि नियमित कप्तान विराट कोहली की वापसी होगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में लेथपोरा के पास चरमपंथियों के हमले में 34 जवान मारे गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंड के इंतजाम के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले हैं। नाइजीरिया में 16 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को नाइजीरिया में कई चुनावी रैलियां की गईं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे को अपनी ब्रेग्जिट योजना पर फिर से एक बड़ी संसदीय हार का सामना करना पड़ा है। क्यूबा की सरकार ने अमेरिका पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए कैरेबियन द्वीप समूह में गुप्त रूप से सेना भेजने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।